हरे कृष्ण। दिस क्लास ऑन श्रीमद् भगवद गीता सेकंड चैप्टर श्लोक नंबर 35 गिवन इन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली ऑन 31 मार्च 2017 बाय माय सेल्फ प्रशांत मुकुंद दास।
भयातृणातुपारतम् मस्यन्ते त्वां महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। भयातृणातुपारतम् मस्यन्ते त्वां महारथ येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यशसि लाघवम्।
इसका अनुवाद हम पढ़ेंगे। जिन जिन बोलिए महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है वे सोचेंगे तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। तात्पर्य बहस दिव्यांग शिल प्रभुपाद की जय। भगवान कृष्ण अर्जुन को अपना निर्णय सुना रहे हैं। तुम ये मत सोचो कि दुर्योधन कर्ण अन्य समकालीन महारथी ये सोचेंगे कि तुमने अपने भाइयों तथा पितामह पर दया करके युद्ध भूमि छोड़ी है। वे तो यही सोचेंगे कि तुमने अपने प्राणों के भय से युद्ध भूमि छोड़ी है। इस प्रकार उनकी दृष्टि में तुम्हारे प्रति जो सम्मान है वह धूल में मिल जाएगा। तो पिछले मंगलवार को हमने चर्चा करी कि एक व्यक्ति के लिए अपनी कीर्ति को बरकरार रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो भक्त होने के नाते हमें कौन सी कीर्ति बरकरार रखनी है? हाँ जी, क्या बताया था पिछली बार, याद है किसी को? भूल गए? हाँ जी, हाँ, तो डॉक्टर शालू माता जी ने बहुत अच्छे से बताया है। उन्होंने बोला है कि हमें अपने संयम बना के रखना है, भक्त के जो नियम है वो बना के रखने हैं, क्योंकि जब एक भक्त पाथ पर चलता है भक्ति के तो बहुत सारे लोग नजर उठाकर देखते हैं, है ना। शराब पीकर कोई आए तो उस पर दो तीन ही नजर डालेंगे, पर कोई भक्ति करने लग जाए, तिलक लगाए, गीता पढ़े, हाथ में माला लेके चले, तो कितने लोग क्रोधी बन जाते हैं हमारे, कितने अगेंस्ट हो जाते हैं, सब परिवार के लोग भी अगेंस्ट हो जाते हैं। लेकिन भक्त को ये समझना चाहिए कि अगर मैं भक्ति के नियमों का दृढ़ता से पालन करूंगा तो इस संसार के लोगों से भगवान मेरी रक्षा करेंगे, और भगवान धीरे धीरे अनुकूल परिस्थितियां ऐसी लाते हैं कि सभी लोग भक्ति करने लगते हैं। जैसे अगर हम अपना निजी उदाहरण लें तो पहले अकेले भक्त थे, उसके बाद पत्नी, परिवार, माता पिता, अभी और रिश्तेदार, आगे जन समूह, सभी भक्त बन रहे हैं, है ना। तो ये भक्त बनते हैं, समय लगता है, लेकिन अगर देखें तो दिस इज द ओनली पाथ, यही एक रास्ता है जो आपको इस संसार में, भक्ति मार्ग ऐसा है जो सच्ची शांति प्रदान कर सकता है, है ना। भगवान भगवद गीता में बोल रहे हैं कि अगर तुम शांति चाहते हो तो क्या करो कि तुम हर एक चीज का भोक्ता मुझको जानो। भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वाम शांति मृगच्छति। उस व्यक्ति को शांति मिलती है जो ये ज्ञात्वा, ये जानता है, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम, सारे के सारे यज्ञों में भोगने योग्य तो भगवान कृष्ण ही है। जैसे मान लीजिए आपने हनुमान जी को भोग लगाया मंगलवार का, हनुमान जी भगवान के कौन है? दास है, तो क्या करेंगे? खा लेंगे, क्या करेंगे? भगवान को लेके जाएंगे, रामचंद्र जी को देंगे। अब रामचंद्र जी कहेंगे किसने लगाया? कहेंगे जी इस भक्त ने लगाया। अच्छा, इसने लगाया है, ठीक है हनुमान आप लेके आए हो तो मैं ले लेता हूँ, परंतु इस भक्त पर पूरी कृपा नहीं मिलेगी क्योंकि ये सही रास्ते से नहीं आ रहा है। भगवान ने गीता में कहा भजताम अविधि पूर्वकम, जो लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो लोग अविधि मार्ग से मेरी पूजा करते हैं। तो एक भक्त बनने के बाद अपनी कीर्ति को बरकरार रखना चाहिए। जीव आत्मा का स्वरूप है, जीवेरे स्वरूप होए कृष्णेर नित्यदास, कृष्ण के हम नित्यदास हैं। इस बात को हमें अगर समझ लें संसार की सारी एंजाइटी खत्म हो जाएगी, गारंटी इस बात की है। लेकिन हम देखेंगे कि भक्त बनने के बाद भी टेंशन, एंजाइटी, परेशानियां, डिप्रेशन बने रहते हैं। इसका कारण यही है, मूल रूप में रूट कॉज देखें इसका एक ही है कि हम अपने को दास मानने को तैयार नहीं है। हमें भगवान से सीखना चाहिए, भगवान स्वयं दास बनने को तैयार है। आपसे बोला जाए आपने डिग्री ले ली पीएचडी या एमबीबीएस या जो भी डिग्रीज ली आपने, या आपने स्टाफ नर्सिंग कोर्स कर लिया या जो भी है, आप उसमें उस नॉलेज को जान गए, आपके नीचे वार्ड बॉयज आ गए या जो भी आ गया, उस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद में आपको लगता है कि अभी मैं सीनियर हो गया हूँ, अब मेरी चलनी चाहिए संसार में। तो कुछ हमारे ऊपर होते हैं, कुछ हमारे नीचे होते हैं। ऊपर वालों से हम सुनते हैं और फिर हम नीचे वालों को सुनाते हैं और हमेशा परेशान रहते हैं। नीचे वालों से इसलिए परेशान रहते हैं कि वो सुनते नहीं है, और ऊपर वालों से इसलिए परेशान होते हैं कि वो मानते नहीं है। तो हमेशा परेशानी बरकरार रहेगी। लेकिन जिस दिन हम ये जान जाएंगे कि भगवान की परिस्थितियां ऐसी हैं, हम उनके संरक्षण में कुछ भी बदलाव नहीं ला सकते, वी कैन नॉट चेंज एन इंच, इतना सा भी बदल नहीं सकते हैं। हमारे पास एक ही रास्ता है, क्या? स्वीकार, स्वीकार करो बस। अब स्वीकार करने के भी दो तरीके हैं। जैसे किसी के घर में मान लीजिए मृत्यु हो जाए, अब उसे स्वीकार तो करना पड़ेगा। इस संसार का कोई केमिकल साइंस ऐसा नहीं है, मेडिकल साइंस, जो एक मृत व्यक्ति को जीवित कर सके। कर सकता है क्या? हम तो एम्स में बैठ के बात कर रहे हैं और आप सब मेडिकल से हैं, बताइए कभी देखा ऐसा? मॉर्चरी से कोई केस आया हो, अरे अरे इनके परिवार वालों ने सिद्ध बाबा के पास जाके बूटी खिलाई वापस, हुआ कभी ऐसा? मृत व्यक्ति जीवित हो सकता है? और एक शब्द सुनते अमृत, अमृत है बढ़िया, ये तो खीर क्या है, अमृत है, अमृत, अमृत शब्द सुनते हैं। अमृत का मतलब उसको खाने के बाद व्यक्ति मृत नहीं होता, ये कैसे हो गया? एक तरफ तो आप कहते हैं कि मृत जो है वो अटल है, और एक तरफ आप कह रहे हैं कि अमृत खाने के बाद कोई व्यक्ति मृत नहीं होता। देवताओं ने भी श्रीमद् भागवत ग्रंथ का जब प्रचार सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को प्रारंभ किया, तो सारे देवी देवता आए और कहा ये भागवत हमें सुना दो। परीक्षित महाराज जो मरणासन है, मरने वाले हैं, इनको हम अपने देव लोकों का, स्वर्ग लोकों का क्या पिला देते हैं? अमृत। तो ये मृत नहीं होंगे। तो आप बताइए कॉन्ट्राडिक्टरी बात है कि नहीं है? एक तरफ अमृत की चर्चा है और एक तरफ अटलता है, मृत्यु। तो ये अमृत क्या है? तो प्रभुपाद जो हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, बहुत सरलता से हमें वर्णन करते हैं। अमृत का मतलब है कि हम इस सच्चाई को समझ जाएं कि हम लोग कौन हैं, शरीर है या आत्मा? आत्मा। प्रभुपाद जी बहुत दिनों तक प्रचार करते रहे अमेरिका में, आई एम नॉट अ बॉडी, आई एम अ सोल, आई एम नॉट अ बॉडी, आई एम अ सोल, आई एम नॉट अ बॉडी, आई एम अ सोल। एक दिन उन्होंने कई वर्षों के जब प्रचार के बाद, जैसे हम आपसे कई बार कुछ प्रश्न पूछते हैं आप उत्तर नहीं दे पाते हैं, नीचे वालों से पूछा, भक्तों से, आप लोग कौन हैं? बोले शरीर है। बोले मैं तो एक साल से प्रचार कर रहा हूं कि हम शरीर नहीं आत्मा है। तो उन्होंने कहा मैंने आपको बताया कि हम शरीर नहीं आत्मा है। कहा वो बात तो ठीक है, हम जानते हैं कि आप शरीर नहीं आत्मा है। कह रहे फिर आप लोग? बोले हम शरीर है। बोले आपने ये कहा था कि हम सब शरीर है नहीं है आत्मा है, आपने ये कहा आई एम नॉट अ बॉडी आई एम अ सोल, तो हमें लगा सिर्फ आप ही आत्मा के स्तर पे, हम सब तो शरीर के। और बात भी सही है, हम सब शरीर के स्तर पे हैं, सिर्फ शिल प्रभुपाद ही आत्मा के स्तर पे हैं। और जब तक शरीर के स्तर पे रहेंगे विभिन्न प्रकार के कष्ट बीमारियां हमें सताती रहेंगी। तो ये बहुत ही समझने योग्य वस्तु है, हमने पहले भी चर्चा करी है कि जब शरीर के कष्ट आते हैं तो आदमी कहता है मैंने बहुत माला करी, इतने दिन जप किया, मेरा बेटा बीमार हो गया, ठाकुर जी अब तो आर पार का सवाल है, या तो इसे ठीक करो वरना ये काटता हूं माला तुम्हारी कैंची से टुकड़े टुकड़े करके, 108 दीप जलाऊंगा लकड़ी की, आग लगा दूंगा, 108 दीप जला के स्वाहा, अब बेटा ठीक करो। उसके अपने प्रारब्ध नहीं है कुछ पिछले जन्मों के, उस प्रारब्ध के काटने के लिए उसको बीमार होना पड़ेगा। और बीमार अगर भगवान ठीक कर दें तो क्या होगा, दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। तो कौन चाहता है दोबारा दोबारा जन्म लेना? शंकराचार्य कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जटरी जटरी शयनम। बार बार इस भयमय भयानक गर्भ में प्रवेश करना कोई नहीं चाहता। खून पी पस मल जो हमारे पेट में है इंटेस्टाइन, इसके अंदर जो गंदगी है उसमें 9 महीने तक रहना पड़ेगा। रह सकते हैं आप लोग? पॉली बैग के अंदर बंद कर दें आपको काले रंग के और उसमें खून पीप गंदगी डाल दें, कौन रह पाएगा 9 महीने? एक पल नहीं रह पाएंगे। घर में थोड़ी सी गंदगी हो जाती है क्लीन करते हैं, रूम फ्रेशनर डालते हैं, है ना। बाथरूम में सोने को बोला जाए सो पाएंगे? और 9 महीने रहना पड़ता है। तो ये दोबारा जन्म मृत्यु का चक्र कटेगा कैसे, अमृत कैसे होंगे? तो प्रभुपाद जी बताते हैं अमृत शब्द का मतलब है आत्मा के स्तर पे जीना। जब हम आत्मा के स्तर पे जिएंगे तो शरीर में पीड़ाएं तो होंगी, पीड़ा तो होगी, कांटा चुभ जाएगा, इंजेक्शन लगेगा, बीमारी आएगी, रोग आएंगे, दवाइयां खानी पड़ेंगी। परंतु दूसरा शब्द है दुख, ये दोनों अलग है, पीड़ा और दुख। तो पीड़ाएं तो होंगी परंतु दुख नहीं होगा। दुख उसको होता है जो अपने को क्या मानता है, शरीर। तो इसका सरल सा उदाहरण है संसार की परेशानियों से मुक्त होने का कि अपने को शरीर मानने से। और ये एक दिन में नहीं होगा। प्रभुपाद जी के प्रवचन प्रभुपाद ने 11 वर्षों तक दिए, पूरे ब्रह्मांड का 14 बार उन्होंने भ्रमण किया और सभी लेक्चर आप सुनेंगे, मैं कई हजारों लेक्चर सुने हैं, हर एक में वो एक जरूर चीज बोलते हैं हम शरीर नहीं आत्मा है। बोले इसके आगे सुनाओ ना कुछ, गोपियों का रास नृत्य सुनाओ ना थोड़ा सा, कैसे आप भ्रमर गीत सुनाइए, थोड़ा सा युगल गीत सुनाइए, गोपी गीत सुनाइए, वेणु गीत सुनाइए। वेणु गीत तो तब समझ में आएगा जब आत्मा के स्तर पे आएंगे, अभी तो सिर्फ रोटी पानी गीत समझ में आता और कोई गीत समझ नहीं आता। इसलिए प्रभुपाद जी ने आगे प्रचार करना ही नहीं, उन्होंने कहा पहले एक स्टेज से आगे बढ़ो, आप शास्त्र में सब कुछ दिया लेकिन पहले बोला आत्मा के स्तर पर जीना। तो यही भगवान अर्जुन को यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं कि अर्जुन एक व्यक्ति की कीर्ति यही है कि वो मानव शरीर का सही इस्तेमाल करे, प्योर यूटिलाइजेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर का सही उपयोग क्या है बताइए, क्या उपयोग है? भगवान को प्राप्त करना है ना। आपने गाड़ी खरीदी बढ़िया सी इनोवा, हनुमान जी का भोग भी लगवा दिया मंगलवार का, उसके बाद में बूंदी ले आए, वहां से लाल रंग का पटका लिया है, बांध दिया शीशे पे लाके, गाड़ी में बैठ गए, अब खुश हो रहे हैं, चलो चलो वृंदावन चलेंगे, स्टार्ट भी कर दी, गियर नहीं डाला, बैठे हुए पहुंचेंगे। तो गाड़ी का कर्तव्य क्या है, गाड़ी किस लिए आई है? हाँ जी, डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए, साध्य तक पहुंचाने के लिए। साध्य कौन है? भक्ति, भगवान का प्रेम, कृष्ण। साध्य को प्राप्त करने के लिए शरीर, साधन शरीर मिला है, इस साधन शरीर से साधना करनी है और साधना नहीं करेंगे तो साध्य तक कभी प्राप्त नहीं। उस गाड़ी का फायदा ही क्या जो ऑफिस ना पहुंचाए, घर में खड़ी घूम 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 कर बेच देंगे, बोले चलती नहीं है, तो नहीं है पर बेकार है। ऐसे मानव शरीर का इस्तेमाल है भगवान को प्राप्त। ये भगवान ने अर्जुन को कहा कि एक व्यक्ति की कीर्ति यह है कि वो मानव शरीर का सही उपयोग करने वाला, अपकीर्ति मिलती है। जब शरीर छोड़कर जाते हैं ना तो लोग बोलते हैं राम नाम, और बेचारा वो तो चला गया, अब सत्य वो समझ ही नहीं पा रहा राम का नाम सत्य। तो इसलिए ये चीज समझना बहुत जरूरी है। तो पिछले श्लोक में हमने चर्चा करी, भगवान ने कहा अपकीर्ति अव्ययम, है ना, कि 4 प्रकार के दोष तुमको लगेंगे। एक दोष हमने बताया था कि अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो तुमको पाप लगेगा। दूसरा दोष बताया था तुम्हारा स्वधर्म चला जाएगा। तीसरा दोष हमने बताया था कि तुम्हारी कीर्ति चली जाएगी। और पिछले श्लोक में हमने वर्णन किया कि तुम्हारी कीर्ति तो चली जाएगी और तुम उसे पुनः प्राप्त भी नहीं कर पाओगे, अब कीर्ति अव्ययम। और आज हम चर्चा कर रहे हैं 5वां दोष तुम्हें लगेगा, वो अर्जुन को भगवान कह रहे हैं कि तुम भयात रणात उपारतम, भय से युद्ध भूमि में विमुख हो गए हो। लोग क्या सोचेंगे, डर के मारे भाग गया अर्जुन, हो डर के भाग गया, ये तो इतना बड़ा योद्धा बनता था ये तो डर के भाग गया, ये तुम्हें बोलेंगे लोग। अब कीर्ति का तो पिछली बार बताया भगवान ने, इस बार बोल रहे हैं 35वें श्लोक में कि भयात रणात उपारतम, भय से युद्ध भूमि से तुम विमुख हो गए हो डर के मारे। तो ये उपारतम शब्द जो है इसको हमें समझना चाहिए। उपारतम विमुख का मतलब दो तरीके से हम समझ सकते हैं। एक होता है विमुख होना, मतलब हटा हुआ, किसी चीज से हटा हुआ, है ना। ये आदमी भक्ति से विमुख है, मतलब भक्ति से हटा हुआ है। और एक का मतलब होता है निष्क्रियता, हाँ निष्क्रियता कह सकते हैं, या फिर उदासीनता या उत्साह रहित कह सकते हैं। मतलब वो व्यक्ति वो कार्य करता ही नहीं है। हटा हुआ का मतलब है कि वो कार्य तो करता है पर कुछ और कार्य करता है, लेकिन निष्क्रियता का मतलब है वो कोई भी कार्य नहीं करता। जैसे अर्जुन जो थे वो लड़ाई के लिए तैयार थे, क्योंकि भगवद गीता के पहले अध्याय में हमने चर्चा की थी, अर्जुन भगवान को कहते हैं, भगवान कृष्ण मैं इन लोगों को मारने की बजाय खुद मरने को तैयार हूं, इस युद्ध भूमि में मुझे मार दो, मैं मरने को तैयार। इसका मतलब वो भागने को तैयार नहीं थे, वो डर नहीं रहे थे। डरे होते तो ये बोलते, भगवान मैं भाग रहा हूं यहां से, मैं नहीं लड़ना चाहता। उन्होंने क्या कहा, मैं मर जाऊंगा पर मैं बाढ़ नहीं चलाऊंगा। और दूसरा, अगर हम निष्क्रियता देखें, निष्क्रियता का मतलब कि मैं बाण नहीं चलाऊंगा, मैं यहाँ खड़ा रहूंगा, ना मैं कुछ करूंगा, मैं बिल्कुल एकदम पुतले के समान हो जाऊंगा। और अगर अर्जुन डर रहे हैं, अगर अर्जुन को डर सता रहा है, भय, तो ये समझना चाहिए महारथी अर्जुन है ना, आपने सुना होगा शब्द महारथी। तो महारथी, अधिरथी और रथी, तीन प्रकार के योद्धा और सैनिक, चार प्रकार के योद्धा रणभूमि में होते हैं, महारथी, रथी, अधिरथी और सैनिक। तो महारथी था अर्जुन, कुछ चुनिंदा महारथी थे, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, है ना, भीष्म, अर्जुन, युधिष्ठिर, महारथी हैं ये। और महारथी बड़े श्रेष्ठ, मतलब कमांडर्स ऑफ कमांडर, चीफ आर्मी स्टाफ, मतलब ये समझ लो इस तरह का व्यक्ति महारथी कहलाता, जो एक्सपर्ट है, दक्ष है अपने लड़ाई युद्ध करने में। अगर वो डर रहा हो, उसके पास हथियार ना हो, निष्क्रिय हो जाए, अपने हथियार उठाने को मना कर दे, तो दूसरा महारथी बाण चलाएगा। महाराणा प्रताप को जानते हैं आप, बहुत ऊंचे हाइट के आदमी थे, बहुत ऊंचे। उनका वध कैसे हुआ था, उनको एक बार उनके दुश्मन ने बोला कि आप, छोटे से गेट था एक महल का, सारे बड़े गेट बंद करवा दिए, एक छोटे गेट होते थे ना, झुक करके जाना पड़ता था। बोले इतना बड़ा आदमी, इसकी गर्दन शीश काटने के लिए इसको झुकाना पड़ेगा। उनको कहा कि आप इस गेट से आओ, हम पीस कर लेंगे, शांति संधि कर लेंगे। जब वो झुक करके आए तो पीछे दो दरबान खड़े थे, उन्होंने गर्दन छल से मारा गया। महाराणा प्रताप इतने बड़े योद्धा थे, दोनों हाथ में तलवार लेके चलते थे, और एक एक तलवार, बताते हैं 80 किलो की एक तलवार थी, 80 किलो की एक तलवार। अभी एक तलवार उठाना ही इतना मुश्किल है, हम तो खुद एक आदमी नहीं उठा पाए, अपना वजन नहीं उठा रहे, कमर में दर्द, पैर में दर्द है। 80 किलो का वजन, और घोड़े का हाल क्या होता होगा जिसपे इतने बड़े महाराणा प्रताप, हाथ में 80 किलो की एक तलवार। एक और तलवार रखते थे साथ में, दूसरी क्यों, सामने वाले की अगर तलवार गिर जाए और वो बोले तलवार होती तो बता देता, करे ले ले, तो उसके लिए एक एक्स्ट्रा कैरी करके चलते थे। तो ये होती है युद्ध की तैयारी। तो अर्जुन इतने शक्तिशाली हैं, महारथी के पास अगर वो बाण नहीं उठाएगा, धनुष नहीं उठाएगा, तो क्या भीष्म पितामह बाण चलाएंगे? तो भगवान ने कहा कि अरे अर्जुन, तुम अगर डर के खड़े रहोगे तो युद्ध प्रारंभ ही नहीं होगा, युद्ध प्रारंभ नहीं होगा क्योंकि सामने वाले चलाएंगे नहीं, तुम उठाओगे नहीं, और युद्ध नहीं होगा तो निर्णय नहीं आएगा, तो तुम टाइम वेस्ट भी करोगे। तो हमें सीखना चाहिए, भगवान ये कह रहे हैं, डोंट वेस्ट योर टाइम। एक भक्त को 24 घंटे भगवान की सेवा में लगाने चाहिए, जब समय मिले तो क्या बोलना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम। तो ये उपरत शब्द है, इसका एक उदाहरण और भी आता है। उपरत मतलब विमुख होना। महाभारत में आप बता सकते हैं कौन सा व्यक्ति था, अर्जुन ने तो प्रारंभ कर दिया अपना युद्ध भगवान के कहने पर, एक ऐसे व्यक्ति थे जो परिस्थिति आने पर उन्होंने बाण चलाने बंद कर दिए, खड़े हो गए, मरने को तैयार हो गए थे, कौन थे? बिल्कुल सही जवाब, भीष्म पितामह। तो ये जो भीष्म पितामह थे, उन्होंने बाण चलाने बंद क्यों कर दिए थे? क्योंकि भीष्म पितामह की हिस्ट्री में अगर हम जाएं, इतिहास में, उनके लीला चरित्र में जाएं, भीष्म पितामह देखा जाए तो वैसे बहुत बड़े भक्त हैं भगवान के, क्योंकि उन्होंने अपने अंतिम समय में भगवान से कहा, भगवान मैं अपनी बेटी की शादी आपसे करना चाहता हूँ। तो भगवान ने कहा अपनी बेटी की शादी, पर आप तो ब्रह्मचारी हैं, आपकी बेटी की शादी कैसे होगी? तो उन्होंने कहा कि जो मेरी मति है, मति स्त्रीलिंग शब्द है ना, मति मतलब बुद्धि, बुद्धि भी स्त्रीलिंग है, मेरी जो मति है उसकी आपके नाम में बिल्कुल रति नहीं है, तो मैं ये चाहता हूं कि मेरी मति से आपका विवाह हो जाए ताकि मेरी कृष्ण नाम में रति हो जाए। ये बात किसने करी? भीष्म पितामह ने, मेरी बेटी की शादी आपसे। तो ये हमारे अनर्थ, हमारी इंद्रिया ही हमारे बच्चे होते हैं, हम इन्हें पालते पोसते हैं, है ना। आंखों को पिक्चर देखनी है तो 250 रुपए का PVR का टिकट देके आंखों को बच्चे को पालते हैं, बेटा खुश रहे। तो जिह्वा के स्वाद की जो इंद्रिय है इसको 50 रुपए देके गोलगप्पे खिला के पालते हैं कि तू और शेर बन जा, काट ले संसार को, मुझे भी परेशान कर अंदर से, है ना। और पत्नी से सुख प्रारब्ध नहीं होता तो आदमी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में फंस जाता है, कुछ गिफ्ट देगा उस स्त्री को या स्त्री पुरुष को गिफ्ट देगी और फिर उनके वाद विवाद में, व्यवहार में क्या होगा, उनकी एक इंद्रिय को संतुष्टि मिलेगी। तो अपने इन बच्चों को पालने के लिए हम संसार में जो भी कमा रहे हैं सब बेकार हो जाता है, सारा समय लगा देते हैं इसमें। तो अपने समय का सदुपयोग करना है। भीष्म पितामह ने कहा मेरी मति की रति आपके नाम में हो जाए, इसे विवाह कर लीजिए। तो भगवान ने कहा ततास्तु। हाँ, तो ये बहुत बड़े भक्त हैं जिनके लिए भगवान ने खुद अपना रथ का पहिया उठाया। तो जो भीष्म पितामह थे इनके पिता का नाम था शांतनु। शांतनु महाराज के पत्नी थी जिनका नाम था गंगा, और गंगा से उनको कई पुत्र उत्पन्न हुए। गंगा ने विवाह करते वक्त, गंगा मैया, उन्होंने कहा था कि महाराज मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूं, लेकिन विवाह के अंदर एक शर्त है कि आप मुझसे कभी कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे, अगर आपने प्रश्न पूछा तो उस दिन मैं बिना कुछ बोले चली जाऊंगी। तो जब भी उनके घर में पुत्र उत्पन्न होते थे तो जो ये माता थी गंगा, ये हर बच्चे को ले जाके गंगा में विसर्जन कर देते थे। और जब इस तरह से होता रहा, जब सारे के सारे 7 बच्चे मारे गए, तो उसके बाद में भीष्म पितामह का नंबर आया जिनका नाम था देवव्रत। अब जो ये देवव्रत थे इनको जब विसर्जन करने, उन्होंने कहा आप मेरी राजगद्दी में, मैं बूढ़ा हो गया, पूरा जीवन निकल गया बच्चे पैदा करते करते, और आप राजगद्दी के लिए कोई बचा नहीं, इसे भी इसने अगर पानी में फेंक दिया फिर क्या होगा? उसको उन्होंने कहा रुको क्या कर रही हो? बोले बस आपका और हमारा इतना ही संबंध था, ये लखिए बच्चा अब मैं जा रही हूँ। गंगा जी गंगा में चली गई और वो बच्चा जो था देवव्रत वो शांतनु महाराज को प्राप्त हुआ। उस देवव्रत को उन्होंने पाल पोस के बड़ा किया। शांतनु महाराज एक दिन जंगल में विचरण कर रहे थे, जिस इंद्रिय की हमने बात करी स्त्री सुख कामी, एक इंद्रिय है हमारी स्त्री सुख का कामी। स्त्री सुख का काम ऐसा है कि संसार में स्त्री को पुरुष, पुरुष को स्त्री, लेकिन शब्द स्त्री सुख कामी इस्तेमाल किया जाता है, जिसके कारण पूरा का पूरा मीडिया बाजार चल रहा है। बूढ़ा हो जाएगा आदमी फिर भी उसको हीरोइन देखने में बहुत अच्छा लगता है, और सच बात है। राजा अकबर ने प्रूफ किया, प्रभुपाद जी ने बोला कि लस्ट इज अ डस्ट विच नेवर गोज अवे, लस्ट इज अ डस्ट विच नेवर गोज अवे। और हम उस लस्ट को बढ़ाते हैं क्या करके? टेलीविजन मीडिया देख करके। अगर कोई बुजुर्ग स्त्री भी अगर किसी युवा हीरो को देख लेगी टेलीविजन में तो उसको तुरंत उसके 25 साल पीछे चली जाएगी। हमारे जमाने में भी ऐसा एक लड़का होता था, मुझे भी अच्छा लगता था, और आपका ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, हो सकता है किसी को ऐसा ना होता हो लेकिन ज्यादातर आज के समाज में ऐसा देखा गया है कि होता है। तो लस्ट इज अ डस्ट विच नेवर गोज अवे, लस्ट एक ऐसी डस्ट है जो कभी नहीं जाती जीवन से, मृत्यु शैया तक भी नहीं जाती है। तो इसको काम करना पड़ेगा तभी हम जीवन में एक्चुअली भक्ति के मार्ग में प्रगति कर पाएंगे। तो ये शांतनु महाराज थे, ये फिर इनकी लस्ट डस्ट ने इनको सत्यवती नाम की स्त्री के प्रति कामुक्त कर दिया और कहा कि मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। वो बोली जी मैंने तो सुना है आपके पास ऑलरेडी एक बेटा है, वो भी शक्तिशाली देवव्रत नाम का, अगर मान लीजिए हमारा विवाह हुआ और बच्चे हुए तो उन पुत्र पुत्री को कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका बेटा कहेगा मैं तो गंगा का पुत्र हूँ और वो सारी जमीन हड़प लेगा, सारा राज्य हड़प लेगा, मेरे बच्चों को क्या, और मैं तो वैसे ही गरीब हूँ, मछुआरे की बेटी हूँ, मुझे तो कुछ नहीं मिलेगा, तो आप मुझे बस इस्तेमाल करके छोड़ देंगे, तो पहले फोरम पे साइन करिए राजगद्दी मेरी। सत्यवती ने जब ऐसे प्रार्थना करी तो ये देवव्रत महाराज भीष्म पितामह जो थे उनको पता चला, कहा मेरे पिता विवाह करना चाहते हैं और सिर्फ एक एग्रीमेंट के कारण उनकी इच्छा पूर्ति नहीं हो रही। अपने पिता की इच्छा पूर्ति करने के लिए, पिता की काम वासना को संतुष्ट करने के लिए भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली कि मैं ब्रह्मचारी रहूंगा आजीवन काल तक, और साथ में यह भी कहा कि इनसे उत्पन्न जो बच्चे होंगे उनको मैं सिंहासन का राजा बनवा दूंगा। सत्यवती के दो पुत्र हुए, एक का नाम था चित्रांगद और दूसरे का नाम था विचित्रवीर। चित्रांगद जो थे वो गंधर्व लोक के राजाओं के द्वारा मारे गए युद्ध में। विचित्रवीर जो थे वो बहुत एक्सपर्ट नहीं थे, वीक थे शरीर से। तो विचित्रवीर के से विवाह करने की जब बारी आई तो उस समय विवाह कैसे होते थे? शादी.com से नहीं होते थे, विवाह.com से भी नहीं होते थे। कैसे होते थे? क्या लव मैरिज? स्वयंवर, स्वयंवर होते थे उस समय। तो स्वयंवर क्या होता था कि स्वयं वर का, स्वयं मतलब खुद वर का आवरण करेगी स्त्री, और उसे कहते थे पाणी ग्रहण संस्कार। पाणी ग्रहण मतलब, पाणी मतलब होता हाथ, हाथ को ग्रहण करके वो लेके जाएगा सबके बीच में से, जिसमें ताकत है आजा लड़ाई कर ले मेरे, इसे स्वयंवर कहते थे। तो एक राजा थे जिन्होंने काशी राजा, काशी जो है ना, काशी बनारस वहां के राजा थे काशीराज। उनकी तीन पुत्रियां थी, अंबा, अंबिका, अंबालिका। तीनों पुत्रियां जो थी उनका स्वयंवर रचा गया और सारे ही राजा वहां पर आए। देवव्रत भी पहुंचे क्योंकि चित्रांगद तो मर चुके थे और विचित्रवीर में शक्ति नहीं थी, तो भीष्म पितामह ब्रह्मचारी होते हुए भी स्वयंवर में पहुंचे। लड़ाई करने में बहुत शक्तिशाली थे, उन्होंने तुरंत सारे राजाओं को हराया और एक ही तीर से सभी राजाओं के मुकुट काशीराज के चरणों में डाल दिए। कहा देखिए सबके चरण, मुकुट आपके चरण में, मतलब ये सब हार गए हैं। सारे राजा देखते रह गए, एक ही तीर में सारे मुकुट सर पे नीचे जमीन पे, वाह कमाल का क्षत्रिय है। कहा तीनों पुत्रियां मुझे प्रदान करिए, तीनों को अपहरण करके लिया सबके सामने से उठा के। तो अंबा अंबालिका का विवाह जो था, अंबिका और अंबालिका का विवाह तो विचित्रवीर से हुआ, परंतु अंबा ने मना कर दिया विवाह करने से। वो बोली मेरा प्रेम तो किसी राजा से पहले से ही है, तो और प्रेम करने वाले व्यक्ति को अलग नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं प्रेम करती हूँ, आप मुझे अलग नहीं कर सकते। कहा ठीक है तुम जहां जाना चाहती हो जाओ, तो वापस उसे छोड़ दिया। जब वो पुराना प्रेमी के पास पहुंची तो उसने कहा तुम्हारा स्वयंवर तो देवव्रत ने कर लिया है, अब मैं ऐसी लड़की से विवाह नहीं कर सकता जिसे कोई स्वयंवर करके ले गया, कल को लड़ने आ जाएगा। हाँ, उस टाइम तो कोर्ट केस भी नहीं होते थे, कोर्ट एग्रीमेंट भी नहीं होते थे, हाँ कि हमने शादी के लिए फोटोग्राफ है, कोर्ट रजिस्टर कराया हुआ है, तो लड़ाई होगी, और मैं लड़ाई नहीं, मैं नहीं पढ़ना चाहती हूँ, नहीं चाहता हूँ, छोड़ दिया। अब अंबा ना इधर की ना इधर की, उसने प्रण लिया, सीधी पहुंच गई किसके पास? भीष्म पितामह के गुरु के पास। कौन थे उनके गुरु? परशुराम। परशुराम के पास जाकर कहा देखिए आपका शिष्य कैसा शरारती है, विवाह में उठा के ले आया, अब विवाह नहीं कर रहा, ब्रह्मचारी होने की प्रतिज्ञा दे रहा है, तो किसके लिए लाया था उठा के? दो बहनों की शादी पहले हो चुकी है, अब मैं तो नहीं करना चाहती हूँ, मुझे तो इसी से करनी है, क्योंकि ये उठा के लाया मुझे इसी से करनी है। तो परशुराम जी ने कहा कि कर लो। कहा नहीं मैं अपने वचन का बद्ध हूँ। अरे गुरु की वाणी छोड़ दोगे? कह रहे मैं जो वचन ले चुका हूँ आप उसके लिए मुझे क्यों बोल रहे हैं तोड़ने के लिए, मैं आपका सम्मान करता हूँ। गुरु और शिष्य का लड़ाई हुआ, झगड़ा हुआ, युद्ध चलता रहा, और युद्ध चलने के बाद में परशुराम को आकर के देव लोकों से राजाओं ने कहा कि देखिए ये एक लीला है, आप भगवान हैं परशुराम, आप इसमें मत पड़िए। परशुराम जी ने अपने शस्त्रों को जमीन पर रख दिया और कहा कि आओ प्रारंभ करो, अपने कार्य को आगे बढ़ाओ, और परशुराम जी चले गए। तो भीष्म पितामह जो थे उन्होंने अंबा से कहा कि देखो मैं तो विवाह कर नहीं सकता हूँ, तुम्हें जो करना है करो। अंबा ने क्या किया? अंबा ने प्रण लिया कि मैं तुम्हारी मृत्यु का कारण बनूंगी, और गंगा में कूद करके आकर लिया सुसाइड, आत्महत्या कर ली। आत्महत्या जब कोई व्यक्ति करता है तो उसकी आत्मा या तो प्रेत योनि में जाती है, या तो जिस परेशानी में उसने आरंभ किया है वहीं से उसकी परेशानियां फिर से प्रारंभ होती हैं। सुसाइड करके कोई व्यक्ति अपनी परेशानियों से मुक्त नहीं हो सकता। आपके पास कोई भी पेशेंट आए तो उसको ये बात बता दीजिएगा, आत्महत्या करके कोई भी व्यक्ति अपनी परेशानियों से कभी मुक्त नहीं हो सकता। क्यों? आत्मा के ऊपर सूक्ष्म शरीर होता है मन बुद्धि अहंकार। मन बुद्धि अहंकार में, मन में परेशानी है, बुद्धि में परेशानी है, शरीर में अहंकार है, आत्मा उसको लेकर दूसरे शरीर में प्रवेश करेगी, जैसे ही थोड़ा सा बड़ा होगा पुनः जागृति होगी, परेशानियां प्रारंभ हो जाए वहीं से एज इट इज। ये नहीं सोचिएगा कि मैंने फांसी लगा ली, सुसाइड कर लिया, अब मेरी परेशानियों से मैं मुक्त हो गया। परेशानी से मुक्त होने का एक ही रास्ता है, भगवान की भक्ति करना, बस और कोई रास्ता नहीं है। तो अम्बा ने जब सुसाइड की, आत्महत्या, उसका पुनर्जन्म हुआ और उसको सारी पुरानी स्मृतियां प्रारंभ से उसको याद आई, स्मरण आई। अब इस बार भी वो क्या बन के उत्पन्न हुई? स्त्री, स्त्री बन के उत्पन्न हुई, लड़की। कहां हुई? द्रुपद महाराज जिनकी बेटी का नाम था द्रौपदी, आपने सुना है, द्रुपद महाराज पंचाल नरेश थे, उनकी बेटी थी द्रौपदी, उनका बेटा था दृष्टद्युम्न, और उनकी एक और बेटी थी जिसको आप नहीं जानते, उसका नाम था क्या? शिखंडी। वो लड़का नहीं था, लड़की थी, जन्म से वो स्त्री थी, स्त्रीलिंग में जन्म लिया उसने, उसका लिंग स्त्री था। अब जब उसका जन्म हुआ, अब देखिए एक आदमी जब आत्महत्या करता है उसके आगे शास्त्र हमें एक एक चीज की टिप्पणी देते हैं। तो आप लोगों को, मैं जो नए बैठे, हो सकता है कि कई बार क्वेश्चन आए, ऐसा कैसे, ये सब तो बोलने की बातें हैं, सब लिखा हुआ है, कथाएं हैं, कहानियां हैं, टिप्पणियां हैं। लेकिन एक बार मैंने, कल ही मैं बता रहा था अपने सेमिनार डीवाईएस में, कि एक गायनेकोलॉजिस्ट से हमारी चर्चा हुई। गायनेकोलॉजिस्ट जो थी उन्होंने बोला कि आपके शास्त्र कहते हैं कि उसमें सब कुछ ज्ञान लिखा हुआ है, है ना। मैंने गायनेकोलॉजी पढ़ी है, क्या ये ज्ञान है? तो मैंने उनको कहा जितना आपके जर्नल में नहीं ना उससे ज्यादा ज्ञान है इसमें। तो वो तो इस बात पे, तो डॉक्टर का ईगो हर्ट हुआ, कहा लेके आइए दिखाइए। मैंने लाके दिखाया उनको, थर्ड कैंटो तीसरा स्कंद भागवतम, देवहूति महाराज कपिल मुनि संवाद। पहले दिन पुरुष का वीर्य किस प्रकार से माता के गर्भ में स्थानांतरित होता है, उस दिन से लेकर जब तक बच्चे का जन्म नहीं होता पूरी प्रक्रिया का वर्णन है। ऐसा जनरल गायनेकोलॉजी में भी नहीं है, एम्स में भी चेक करवाया है मैंने। फर्स्ट डे से 21 डेज के बाद में बताते हैं कि लेडी इज अ प्रेग्नेंट लेडी, उससे पहले क्या? अच्छा, अल्ट्रासाउंड के बिना बता नहीं सकते कि पुत्र है कि पुत्री है, और उसको अभी डिस्क्रिमिनेट कर दिया कि चेक नहीं कर सकते, बैंड है। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमें पुत्री को मारना चाहिए या पुत्र को मारना चाहिए, पुत्र पुत्री संतान है, सभी को प्रेम पूर्वक पालना चाहिए, परंतु अगर पता लगाना हो तो कैसे पता लगाएंगे? अल्ट्रासाउंड इज द ऑप्शन, डॉक्टर बताएगा नहीं। शास्त्र में वर्णन है और मैंने चेक किया है, पेल्विक ग्रिडल ऑफ अ लेडी, लेडी का जो कूला होता है स्त्री का, उसको देख करके बता सकते हैं उसका पेन किस साइड है, लेफ्ट या राइट। जिस तरह से उसमें वर्णन है, इधर का होगा तो पुत्र, इधर का होगा तो पुत्री, और मैंने दो बार चेक किया है, बिल्कुल सही निकला, एग्जैक्ट। सेवेंथ मंथ में बता दिया था आपके बेटा होने वाला है, आपकी बेटी होने वाली है। पावरफुल स्क्रिप्चर्स, शास्त्र इतने अच्छे हैं, हर एक चीज का ज्ञान है उसके अंदर। एस्ट्रोलॉजी ले लें है उसके अंदर, मैथमेटिक्स ले लें उसके अंदर है। मैथमेटिक्स ऐसी, एक दिन मैंने लेक्चर दिया था मैथमेटिक्स पे, परेशान हो गए लोग, मिनट उसके आगे सेकंड, सेकंड के आगे बोले नैनो सेकंड, उसके आगे भी वर्णन है, सेकंड के नीचे भी, और अगर गिनती अगर करते हैं अरब खरब बिलियन मिलियन, बस उसके बाद, उसके बाद बंद हो जाते हैं। उसमें देखो शंख इतना आगे तक जाता है, अभी मेरे पास डिटेल नहीं है और मुझे याद भी नहीं है, इतना आगे तक जाता है कि बिलियन तो मतलब ऐसे लगता है मच्छर जैसा, इतने आगे तक की संख्याएं वर्णन है कि क्या गिनती लिखी जाती है। चक्र शंख बहुत आगे, पद्म, बिल्कुल सही आपने कहा। तो इस तरह से शंख चक्र पद्म सभी रूप में वर्णन है, और कौन सा कितना है वो किसी दिन और आपको सुनाएंगे। भगवान की ओघा, ओघा है भगवान की सेना, बंदरों की जो सेना थी महा ओघा सेना थी, अब बिलियन तो उसके सामने बहुत छोटा सा था, महायोगा वो बताऊंगा जैसे ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा सुन के कि क्या शास्त्र में वर्णन। तो एवरीथिंग इज इन द स्क्रिप्चर्स, शास्त्र में सब कुछ है, पर परेशानी ये है हम सब कुछ पढ़ते हैं और पढ़ने योग्य को छोड़ देते हैं। अखबार में 3 घंटे लगाते हैं जिसमें से हम मोदी जी को ना चेंज कर सकते हैं ना उनको दोबारा ला सकते हैं, जो होना है वो होना है, हमारा उसमें कोई योगदान नहीं है, लेकिन हम उसमें 3 घंटे लगाएंगे पर भगवान को हम ला सकते हैं, ये हमारे पास भगवान ने चॉइस दी है, उसमें हम समय नहीं लगाते। अम्बा का पुनर्जन्म हुआ शिखंडी के रूप में और वो स्त्री बनी, उसका विवाह हुआ। विवाह होने के बाद में उसको ये विवाह किससे होगा, उसकी जब जन्म हुआ तो आकाशवाणी हुई इसको पालना एक पुरुष के रूप में, तो उसको पुरुष के आयुध पुरुष के वस्त्रों में पाला गया, जैसे होता है ना टॉम बॉय गर्ल, वैसे बनाया गया उसको, बताया ही नहीं किसी को कि स्त्री है, और विवाह हो गया उसका। विवाह किससे हुआ? स्त्री से होगा, क्योंकि वो पुरुष के रूप में। जब स्त्री से विवाह हुआ तब विवाह के बाद में स्त्री को पता चला, उसकी पत्नी को, कि ये जो जिनसे मेरा विवाह हुआ है ये तो खुद ही स्त्री है, दो स्त्रियों का विवाह हो गया, ये तो मैरिज बैन होनी चाहिए थी, गलत हो गया। उसकी स्त्री ने, शिखंडी की पत्नी ने शिखंडी को कहा कि तुमने मुझे अपमान किया है और तुमने ये नीच कर्म किया है, निम्न योनि का कर्म किया है, अब मैं तुम्हें श्रापित करती हूँ, चली जाओ यहाँ से निकलकर, अपना मुंह मत दिखाना। तो अम्बा जो अभी शिखंडी के रूप में थी बार बार अपमानित हो रही है। देखिए क्या कष्ट खत्म हो गया उसका आत्महत्या करने से, फिर उससे भी खतरनाक कष्ट सामने आया। और फिर वो जब जंगल में जाती है तो जंगल में जाकर के वहां पर अपनी आत्महत्या फिर से करना चाहिए, फिर वही गलती, फिर आत्महत्या का चक्र, फिर से दोबारा योनि में आना, आत्महत्या करने लगती है तो वहां एक यक्ष आ जाता है। यक्ष होते हैं ना पेड़ों में रहते हैं, भूत प्रेत यक्ष किन्नर ऐसी प्रजातियां जो दिखाई नहीं देती हैं पर रहती हैं। यक्ष था, यक्ष ने कहा क्या कर रही हो तुम? कहा मैं आत्महत्या करने जा रही हूं। रुको क्या परेशानी है? कहा मैं स्त्री हूं, मेरा विवाह हो गया, मेरी पत्नी ने मुझे निकाल दिया। कहा कि एक स्त्री का विवाह दूसरी स्त्री से कैसे हो सकता है? कहा ठीक है मैं तुमको पुरुषत्व प्रदान करता हूं। उस यक्ष ने पुरुषत्व प्रदान किया, ये लो पुरुषत्व, पुरुष बन जाओ, अब जाओ और अपने विवाह संपन्न करो। वापस गए शिखंडी, अपमानित हो गए थे, अपनी पत्नी के साथ रहने लगे, परंतु उनके कैरेक्टरिस्ट, उनके हार्मोन्स, उनके नेचर अम्बा का था। उनकी स्मृतियां प्रारंभ थी कि मुझे किससे बदला लेना है, विश्वपितामह से। विश्वपितामह इतने पावरफुल फाइटर थे, इतने बड़े क्षत्रिय थे कि उनके सामने अर्जुन भी नहीं टिक सकते थे, उनके सामने कर्ण भी नहीं टिक सकते थे, यहां तक कि द्रोणाचार्य भी नहीं टिक सकते थे, इतने पावरफुल फाइटर। तो अर्जुन और पांडवों ने सोचा कि मारेंगे कैसे इनको, भय की स्थिति है। तो अर्जुन यहां पर सारा चर्चा कर रहे हैं भगवान से, मारेंगे कैसे? तो भगवान ने कहा कि मैं हूं ना, चिंता क्यों करते हो, सब बताऊंगा मैं। विश्वपितामह से जाकर ही पूछो कि वो कैसे मरेंगे। विश्वपितामह की करुणा देखिए, उन्होंने खुद ही बताया मैं कैसे मरूंगा। कहा कि तुम्हारी सेना में द्रौपदी का एक भाई है जिसका नाम है शिखंडी, पहले वो बहन थी लेकिन अभी भाई है, दृष्टद्युम्न तो पहले से ही तुम्हारे साथ है और द्रौपदी के कारण सारा महाभारत हुआ है, तो द्रुपद महाराज के शिखंडी नाम का जो पुत्र है उसको अगर तुम मेरे सामने लाओगे उस पर मैं वार नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने जब ब्रह्मचारी व्रत का पालन किया था तो एक और मैंने निर्णय लिया था जीवन में कि कभी किसी स्त्री पे वार नहीं करूंगा। कहा लेकिन वो तो पुरुष है। कहा वो आपके लिए है, मैं जानता हूं कि वो स्त्री है, वो अम्बा का दूसरा रूप है, उसका पुनर्जन्म हुआ है। तो यहां पर पुनर्जन्म भी स्थापित होता है महाभारत, और महाभारत कोई गणना नहीं है, इतिहास है, सभी लोग महाभारत पढ़ते हैं और देखते हैं। महाभारत में पुनर्जन्म के बारे में वर्णन है, अम्बा का पुनर्जन्म। तो यहां पर साइंस फिर से मात खा जाती है जो कहते हैं कि देयर इज नो री इनकारनेशन, इट इज री इनकारनेशन इज देयर। फिर उसका पुनर्जन्म हुआ और अम्बा को शिखंडी रूप में आगे खड़ा करके अर्जुन जब लेके चले तो शिखंडी भी तीर चलाते थे पर उनके तीर विश्वपितामह को नहीं लगते थे क्योंकि वो स्त्री थी, उनके तीर ऐसे लगता था जैसे वो प्रेमिका अपने प्रेमी पे फूल खींच के मार रही है, टच ही नहीं होते थे, ऐसे गिर जाते थे और उनको गुदगुदी होती थी। और जब अर्जुन चलाते थे तो पूरे के पूरे बाण जाकर विश्वपितामह में घुस जाते थे और उन्हीं बाणों से वो बाणों की सैया पे जाकर लेट गए, शर सैया के ऊपर। सोचिए जरा, खुद ही विश्वपितामह ने बताया। तो ये जो शिखंडी थे इनके बारे में हमने वर्णन किया कि इस प्रकार से उपहत नाम का जो शब्द यहां पर आया इसका मतलब है उपरतम, उपरत, उपरत मतलब विमुख होना। तो विश्वपितामह भी विमुख हुए, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा परंतु तुम्हें विमुख नहीं होना चाहिए। और आगे इसमें वर्णन है मत्स्यंत त्वम महारथा, क्योंकि सब लोग तुम्हें बड़ा योद्धा मानते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कोई आपको बड़ा योद्धा, जैसे आप मुझे भक्त मानते हैं, मानते कि नहीं? अगर मुझे यहाँ मोड़ पर आप सिगरेट पीता हुआ देखें तो क्या लगेगा आपके मन में? मेरी कीर्ति पूरे जीवन के लिए चली जाएगी, है ना? कह रहे बड़े भाषण देते अभी सिगरेट पी रहे। तो मुझे अपनी कीर्ति बरकरार रखने के लिए बहुत सारी चीजों के ऊपर काम करना पड़ता है और करना चाहिए एक भक्त को, आपको भी करना चाहिए। आप तिलक लगाएं, मंगलवार की क्लास में आए, वापस डिपार्टमेंट में जाए, बोले हर मंगलवार को भाग जाते हो अपने टाइम पे और बड़ा गीता का ज्ञान ले रहे हो, माला जपते हो, क्रोध देखा है अपना अपकीर्ति। तो ये भय हर भक्त को रहना चाहिए कि मेरी अपकीर्ति ना हो। उस कीर्ति को बरकरार रखने में आप भक्त बन जाएंगे, शुद्ध भक्त। फिर आपको मेंटेन, फिर अपने आप स्वतः चालू हो जाता है प्रोसेस। अब आज मेरे हमारे सामने अनियन ला के रख देंगे तो क्या खा पाएंगे? जबरदस्ती डालेंगे तो कहेंगे भैया साइनाइड खिला दो, अनियन मत खिलाओ हमको। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो चुकी है, प्रोसेस अपने आप शुरू हो जाता है ना। तो इस तरह से हमें समझना चाहिए कि वो बहुत बड़े बड़े योद्धाओं ने उनकी तारीफ करी। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य ने कहा कि ये तो इंद्र से भी महान योद्धा है। अगर अर्जुन के सामने इंद्र भी आ जाए तो टिक नहीं सकता, क्योंकि उसने इंद्र को भी परास्त किया है, शिव को भी परास्त किया है। इतना ताकतवर अर्जुन, लेकिन भीष्म उससे भी ज्यादा ताकतवर है, तो भीष्म को कैसे मारा जाए? तो शिला प्रभुपाद जी जब इसी श्लोक पे प्रवचन दे रहे थे लॉस एंजल्स में, तो प्रभुपाद ने कहा एक क्षत्रिय की पीठ पे अगर घाव हो, अगर एक क्षत्रिय की पीठ पे घाव हो तो उसको क्या कहते हैं? कायर। और क्षत्रिय की छाती पे घाव हो तो उसे क्या कहते हैं? वीर कहते हैं, है ना। तो ये समझना चाहिए, एक क्षत्रिय की पीठ पे घाव हो तो वो कायर है। तो भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि अगर विमुख हो जाओगे तो क्या कहलाओगे? कायर कहलाओगे। तो कायर सुन के क्या तुम, जो इतने बड़े लोग तुम्हें कृपाचार्य, भीष्म, इंद्र और शिव तुमको योद्धा मानते हैं, और वो कहेंगे कि युद्ध जब आया तो भाग खड़ा हुआ, ऐसा बड़ा अजीब योद्धा देखा हमने। हा? और प्रभुपाद जी बताते हैं लंदन के एक प्रवचन में कि एक क्षत्रिय थे औरंगजेब की सेना में, उनका नाम था यशोमंत सेन। यशोमंत सेन इतने बड़े क्षत्रिय थे, इतने बड़े ताकतवर फाइटर थे, एक योद्धा थे। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा था कि युद्ध के बाद दो ही निर्णय होंगे, या तो मैं विजेता होऊंगा या वीरगति होऊंगा, लेकिन वापस आऊंगा तो विजय होके आऊंगा। तो एक बार वो हार गए युद्ध, यशोमंत सेन युद्ध हार गए, लेकिन उन्होंने आत्महत्या नहीं करी क्योंकि वो जानते थे आत्महत्या गलत है। तो उदास मन से सारे सिपाहियों को मार करके अकेले घोड़े पे बैठकर वापस आ रहे थे। तो उनकी पत्नी को खबर मिली, पहले ही खबर मिल जाती थी, जैसे आजकल हम व्हाट्सअप कर देते हैं, आई एम रीचिंग इन 10 मिनट्स। वो पहले से ही खबर पहुंचा दी एक खबरी के द्वारा, यशोमंत सेन आ रहे हैं। रानी ने कहा हार के? कह रहे हाँ, हो ही नहीं सकता, दरवाजे बंद कर दो। सारे राज्य के दरवाजे बंद कर दिए, पत्नी ने घुसने नहीं दिया उनको अंदर। कहा रे मुझे क्यों नहीं घुसने दे रही हो? उन्होंने कहा क्योंकि आप यशोमंत सेन ही नहीं हो। कहा रे मैं ही तो तुम्हारा पति हूं। कहा कैसे आप मेरे पति हैं? उन्होंने कहा मेरे पति ने तो कहा था कि वो हार जाएंगे तो मर जाएंगे, लेकिन जीतेंगे तो वापिस आएंगे। तो आप तो हार के आए, तो इसका मतलब हार के जो आए वो मेरे पति नहीं। तो इतना क्षत्रिय का जो जुबान की कीमत थी, उनकी पत्नी ने उनको घुसने नहीं दिया। प्रभुपाद जी बता रहे हैं इसके बारे में अपने लंदन के एक प्रवचन। तो उसी तरह से हमको समझना चाहिए कर्तव्य परायणता होती है एक जीवन में। तो जैसे अर्जुन को भगवान लड़ने का कर्तव्य परायण सिखा रहे हैं, हमारे आत्मा को परमात्मा की सेवा में लगाना ये कर्तव्य परायणता है, ये कोई धर्म नहीं है। अच्छा आप लोग तो अब हिंदू बन गए हो, अच्छा अच्छा आप लोग अब इस्कॉन को बोल, अच्छा अच्छा आजकल आप लोग वैष्णव बन गए हो, नहीं। आत्मा का कर्तव्य परमात्मा की सेवा करना, जो नहीं कर रहा वो अपने कर्तव्य परायणता से विमुख हो चुका है, एज इट इज, सिंपल एज इट इज, बहुत ही सरल रूप से। इसमें धर्म पालन करने की कोई बात ही नहीं है। हम नहीं कह रहे आपको कचौड़ियां बांटो, पटका बांधो माथे पे, जय माता दी के नारे लगाओ, हरे कृष्णा के नारे लगाओ, रोड पे आंदोलन करो, बड़ी बड़ी यात्राएं करो, नहीं कह रहे। सिर्फ इतना कह रहे हैं अपनी आत्मा को भगवान की सेवा में लगाओ। और आत्मा को भगवान की सेवा में लगाने का सरल मार्ग भगवान ने क्या कहा? भगवान के नामों का जप करना। तो जो भगवान के नाम का जप नहीं करता वो क्या करता है बताइए प्रभु जी? कर्तव्य परायण नहीं है वो व्यक्ति। यू आर नॉट डूइंग योर ड्यूटी एज अ सोल। शरीर का भोजन दे रहे हैं, आत्मा का भोजन जीरो। शरीर छूटकर जब जाएगा, शरीर का दाल चावल यही मिल जाएगा, आत्मा जीरो, भूखी प्यासी जाएगी। और आत्मा का भोजन देना चाहते हैं तो निरंतर जपते रहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम।